अधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
पाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थो महान्, श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से जो यहाँ साल 2004 में थे जन्माष्टमी के समय, 3 साल पहले, आपको याद होगा कि जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कथा हो रही थी। वेणु गीत का विषय समाप्त हो गया था, उसके बाद भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, तो वस्त्र हरण लीला की चर्चा भी संक्षेप में हुई थी। वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 22वें अध्याय का विषय है, और इस बार हो सके तो एक अध्याय 23वें अध्याय की चर्चा हम करना चाहेंगे, जिसमें श्री कृष्ण ने किस प्रकार से ब्राह्मणियों की जो यज्ञ पत्नियां थीं उनके ऊपर कृपा की, इस विषय का वर्णन श्रील शुकदेव गोस्वामी करते हैं। अब ये याद रखिए कि बांसुरी बजाकर श्री कृष्ण ने सभी को आकर्षित कर लिया है, अपने वेणु गीत से समस्त ब्रजवासी गण आकर्षित हुए हैं। इनके अलावा जितने भी देवी देवता गण हैं, ऊपर के लोगों के निवासी हैं, ब्रह्मांड के सभी बल के आकर्षित हुए हैं। इस लीला के बाद जब मार्गशीर्ष का महीना आया तो भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण लीला की। उस समय ठंडी का मौसम था, और उस समय जब वस्त्रों का हरण किया तो गोपियों को एक दृष्टि से देखा जाए तो तकलीफ ज्यादा हुई, क्योंकि ठंडी थी और वृंदावन की ठंडी काफी होती है। इस समय थोड़ा समय बीत गया तो 22वें अध्याय के अंत में ही फिर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करना शुरू करते हैं वो आगे की कथा। गोपियों के वस्त्र हरण लीला के बाद थोड़ा समय बीत गया, उसके बाद क्या हुआ शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अथ गोपैः परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनांगतो दूरं चारयन् गासः क्रजः। अथ थोड़े समय बाद, थोड़े समय बाद मतलब अब गर्मी का समय आ गया था, मार्गशीर्ष अर्थात ठंडी के समय बीत चुके थे, ठंडी के महीने बीत चुके थे, अब गर्मियों का मौसम अभी आ रहा था। तो उस समय गोपै ही परिवृतो, परिवृत मतलब आवृत होकर घिर घिर गए थे गोपै ही, जो ग्वाल बालों ने उनको घेर लिया था। और भगवान देवकी सुतः अर्थात श्री कृष्ण जो कि गोप बालकों के द्वारा घिरे हुए थे, वृंदावनात गतो दूरम, वृंदावन में अर्थात वन में, वृंदा महारानी के वन में, वृंदावन में दूरम गतः, बहुत दूर अंदर वन में चले गए। लेकिन क्या वो केवल ग्वाल बालों के साथ में गए, और कौन थे उनके साथ? गाह चारयन सहाग्रजः, गाह मतलब गौए, अपने गौओं को साथ में लेते लेते वृंदावन ब्रज के वन में अंदर चले गए। सह अग्रजः, सह मतलब साथ में, हमेशा उनके साथ में उनके अग्रज, उनके बड़े भाई होते थे जिनका नाम था, नाम है बलराम। अग्रज मतलब जिन्होंने पहले जन्म लिया है, तो बड़े भाई, तो अपने बड़े भाई बलराम जी साथ में, और साथ साथ कई ग्वाल बाल उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, सब बड़े आनंद से आगे जा रहे थे अपने गौओं को साथ में ले जाकर चराने के लिए। ये दृश्य अपने मन में कल्पना कीजिए, कितना सुंदर दृश्य हुआ होगा। इस दृश्य को देखते देखते ब्रजवासी गण बिल्कुल विस्मित हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, बहुत ही सुंदर दृश्य। भगवान श्री कृष्ण का वन में प्रवेश करना, इसके बारे में भागवत के कई श्लोक हैं। परंतु हालांकि ब्रजवासी गण इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन कर सकते थे, इससे ज्यादा उनको आनंद तब आता था जब श्री कृष्ण लौट के आ रहे हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण वापस आ गए हैं। जाते समय वो चले जाते हैं, फिर दिन भर उनका दर्शन नहीं हो पाता है, और दिन भर वो ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गौओं को चराते हैं, लेकिन अन्य ब्रजवासियों को उनके संग का लाभ नहीं मिलता है। कृष्ण का संग उनको केवल विप्रलंब भाव में मिलता है, विरह के भाव में वो कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। जब ग्वाल बाल लौट के आते हैं शाम को, तो श्री कृष्ण ने जो दिन के समय जो भी लीलाएं की थी उनका वर्णन करते, तो इनको बड़े उत्सुकता से, उत्साह से, ध्यान से सुनकर ब्रजवासी गण इनका इन लीलाओं को दोहराया करते बार बार। इस प्रकार से उनका समय बीतता, कृष्ण के सिवाय और कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तस् परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये शुद्ध भक्तों का वर्णन है, जिनके जीवन में कृष्ण के अलावा और कोई विषय ही नहीं है चर्चा करने के लिए, जिनके लिए श्री कृष्ण ही प्राण धन है, सर्वस्व है, ये भक्त होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है ये कैसा व्यक्ति है, तो केवल वो किस विषय में बात के बारे में बात करता है बस वही सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, क्योंकि आदमी वही बोलेगा जो उसके मन में है, और उसके मन में जो है उससे हम जान सकते हैं कि उसकी चेतना क्या है, उसका स्तर क्या है। तो जब तक हम कृष्ण कथा सुनेंगे नहीं और कृष्ण कथा बोलेंगे नहीं, तब तक मन में कृष्ण कैसे समाये रहेंगे। लेकिन ब्रजवासी गण कृष्णमय थे, कृष्णमय मतलब कृष्ण से भरे हुए थे, उनका हृदय, उनका चित्त, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां, उनके शरीर में रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में उनके कृष्ण थे, कृष्ण के अलावा कुछ वो जानते नहीं थे। इसलिए ब्रजवासी गण इतने विशेष माने जाते हैं। तो खैर, ये बड़ा सुंदर दृश्य था, श्री कृष्ण वन की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं, और अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने जाएंगे और एक सुंदर लीला का। गोपियों के ऊपर उन्होंने कृपा तो बरसाई, भगवान श्री कृष्ण के कृपा का विशेष प्रदर्शन ये वस्त्र हरण लीला था। परंतु अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने जाएंगे एक और लीला जिसमें श्री कृष्ण ने अन्य महिलाओं के ऊपर भी कृपा बरसाई। मथुरा और वृंदावन के बीच में रहने वाले थोड़े ब्राह्मण थे और ये याज्ञिक ब्राह्मण थे, यज्ञ किया करते थे और उनके पत्नियों को यज्ञ पत्नी कहते हैं, ब्राह्मणी। इनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा बरसाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके शुद्ध भक्त हैं। अब विशेष बात यह है कि इस लीला के पहले इन ब्राह्मणियों ने श्री कृष्ण को कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं था, केवल श्री कृष्ण के बारे में सुना था, बहुत सुना था, बल्कि काफी कुछ सुनते आए थे और केवल सुनने मात्र से उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया था। तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, यही है भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य। भगवान केवल दुष्टों का विनाश करने नहीं आते हैं, वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो इसलिए भगवान चाह रहे थे कि अब मैं ब्रज में घूम घूम के भ्रमण करके लीला कर रहा हूं, इधर कृपा दे रहा हूं, उधर कृपा दे रहा हूं, सबको मेरे प्रति आकर्षित कर रहा हूं, अब कौन से मेरे भक्त रह गए? हाँ, अब ये यज्ञ पत्नियां रह गई, उनको मेरा सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, अब उनको जाकर मैं संग देने वाला हूं। तो इस उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने गौओं को चराते चराते, अपने ग्वाल ग्वाल बाल मित्रों को साथ में ले जाते इस दिशा में गए जहां की ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। और आगे चल के फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि क्योंकि ये अभी गर्मी का मौसम आ ही रहा था और सूरज की किरणें बड़ी तेजी से आ रही थी और श्री कृष्ण ने देखा कि जितने भी वृक्ष हैं वो मानो कि झुक गए हैं छाता या छतरी की तरह उनको छाया देने के लिए। तो श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि इन वृक्षों के ऊपर दी और इन वृक्षों का जीवन सफल हो गया। अगर कोई वृंदावन में एक वृक्ष के रूप में भी जन्म ले तो उसका जीवन सार्थक। तो ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये भी पूर्व जन्मों के कोई बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, भगवान की सेवा की थी और वो चाहते थे कि वृंदावन में जन्म लेके वो कृष्ण की सेवा करें। ये सब कल्प वृक्ष हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और हर अवसर में वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, ये है ब्रजवासी। ब्रजवासी का मतलब केवल ये नहीं है कि जो ब्रज में वास करता है, वो तो है ही, परंतु कोई ब्रज में नहीं भी वास कर रहा हो, अगर वो व्यक्ति अपने तन मन धन आदि सब कुछ से कृष्ण की सेवा करना चाहता है या चाहती है तो वो भी ब्रजवासी है। क्योंकि ब्रज का ये विशेष गुण है कि हर एक प्राणी वहां केवल श्री कृष्ण के लिए जीता है, उसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए, बस मौका ढूंढते हैं। ये आतुरता, ये लोभ जो है श्री कृष्ण की सदैव सेवा करने के लिए, ये वृंदावन की विशेषता है। तो यहां के वृक्ष भी विशेष हैं। वैसे साधारणतः देखा जाए तो वृक्ष का जन्म एक नीच जन्म माना जाता है। नल कुंवर और मणिग्रीव जब स्वर्ग लोक में रमण कर रहे थे महिलाओं के साथ में नग्न अवस्था में और नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो उन्मत्त होने के कारण कुबेर के इन दो पुत्रों ने सही तरह से नारद मुनि का आदर भी नहीं किया, तो नारद मुनि ने इनके ऊपर कृपा की। किस प्रकार से कृपा की? उनको श्राप दिया। अब ये श्राप देने कृपा कैसे हो जाता है? जब नारद मुनि जैसे भक्त श्राप देते हैं तो वो कृपा ही होती है, जो भी ऐसे शुद्ध भक्त करते हैं वो कृपा ही होती है, चाहे वो बाहरी रूप से प्रेम लगे या क्रोध लगे या श्राप लगे या वरदान लगे। तो उन्होंने श्राप दिया कि क्योंकि आप नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हो तो आप जाके पृथ्वी लोक पर वृक्ष बन जाना। तो फिर उनके होश ठिकाने आ गए, फिर वो कृपा याचना करने लगे। फिर नारद मुनि ने सोचा कि चलो इनको पछतावा तो हो गया है, तो ठीक है वृक्ष तो बनेंगे, परंतु उन्होंने कहा कि आप वृक्ष बनोगे लेकिन वृंदावन में बनोगे, आप अर्जुन वृक्ष बन जाओगे। और कई सालों बाद स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे वहां लीला करेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और वाकई ऐसे ही हुआ, जब उखल से बांधे गए थे श्री कृष्ण और उखल को खींचते खींचते इन दो वृक्षों के बीच में लाए और दो वृक्षों को धड़ाम से गिरा दिया और नलकूवर और मणिग्रीव अपने स्वर्गीय शरीर में, सूक्ष्म शरीर ने प्रकाशमान शरीर में आगे ऊपर आए और सारे ब्रजवासी गण बड़े आश्चर्यचकित हो गए, घबरा कर यहां पर भाग के आए कि ये कैसा हो गया, क्या ये भीषण आवाज क्या थी। और देखा तो ये दो विशाल वृक्ष गिर पड़े हैं और श्री कृष्ण ठीक उनके बीच में है और उनको कुछ नहीं हुआ है। तो बाकी बच्चों को जब पूछा तो बच्चों ने कहा कि हमने देखा कि दो वृक्ष जैसे ही गिरे तो स्वर्ण रंग के दो लोग इस वृक्ष में से बाहर आए और आकाश में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी हम यहाँ बेलगाम में भी गिरे हुए वृक्ष दिखते हैं जो तूफान की वजह से या किसी वजह से गिरे हो। अगर कोई आके बोले कि इस वृक्ष के अंदर से स्वर्ण रंग का आदमी बाहर आया तो हम विश्वास नहीं करेंगे, और खास करके छोटे बच्चे ऐसा बोलते हैं तो हरगिज विश्वास नहीं करेंगे। तो ब्रजवासियों ने भी विश्वास नहीं किया, ये छोटे बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है कभी वृक्ष गिरने से कोई सोने के रंग का आदमी बाहर आता है। लेकिन ब्रजवासीगण नहीं जानते थे पीछे लीला क्या हुई थी। तो ये वृक्ष जो है वृंदावन के वृक्ष विशेष हैं क्योंकि उनको श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है, लेकिन यहां बेलगाम के वृक्ष इतने भाग्यशाली नहीं है। हाँ, केवल राधा गोकुलानंद मंदिर के पास में वृक्ष रहने वाले वृक्ष भाग्यशाली है क्योंकि वो हर दिन नाम संकीर्तन सुनते हैं, तो ये भाग्यशाली है। लेकिन साधारणतः जो वृक्ष है ये नीच योनि मानी जाती है, जो बहुत पाप करते हैं उनको ऐसे शरीर मिलते हैं। परंतु वृंदावन के वृक्ष ये पाप कर्मों की वजह से नहीं पाए गए हैं उन जीवात्माओं को, वो विशेष रूप से भगवान की सेवा भक्ति करने के वजह से पाए हुए हैं इन जीवों को। इसीलिए ये सारे ऋषि मुनि जो भक्त हैं अब श्री कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं। अरे श्री कृष्ण को गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज है, कड़ी धूप है, तो चलो थोड़ा छांव दे दे भगवान को। तो इस प्रकार से इन वृक्षों के ऊपर कृपा दृष्टि करते करते श्री कृष्ण आगे बढ़े जा रहे थे और फिर अपने ग्वालवाल मित्रों को बड़े स्नेहपूर्ण आंखों से देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, उनका नाम पुकारते पुकारते। अब कई ग्वालवालों का नाम आएगा इसमें। हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभौ च अश्विन देव प्रस्थ वरुथप। तो इन्होंने 8 या 10 उनके मित्रों का वर्णन किया है। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जैसे 8 दिशाएं होती हैं, इन 8 दिशाओं में श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए 8 ग्वालबाल अलग अलग जगह घेर के रहते हमेशा श्री कृष्ण को। जब भी श्री कृष्ण आगे चलते तो ये 8 भक्त ऐसे 8 दिशाओं में उनको उनके पास में रहते। जैसे स्तोक कृष्ण, अंशु यानी अंशुमान, अंशुमान का उन्होंने संक्षिप्त रूप में अंशो कहा। फिर श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, ये अर्जुन पांडव अर्जुन नहीं है, वो दूसरे अर्जुन, अलग अर्जुन है वो तो द्वारका और हस्तिनापुर के अर्जुन है, और ये अर्जुन अलग है जो ग्वालबाल मित्र हैं श्री कृष्ण के। विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, इनमें से कई हमारे गोकुल धाम में बैलों के नाम भी ऐसे हैं, वरुथप आदि। तो ये आठ, इनमें से आठ दिशाओं की रक्षा करते हैं, और विशेष करके देवप्रस्थ और वरुथप वो आगे और पीछे रहते हैं। जो आगे रहते हैं वो पथ को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, और पीछे जो रहते हैं वो छाता या कुछ ऐसे कभी कभी पकड़ते हैं श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम से। ऐसे नहीं जैसे एक राजा का सेवक राजा की सेवा करता है छाता लेकर, उस भाव से नहीं, यहां केवल स्नेह से। वहां करते हैं राजा, जब राजा का सेवक राजा को ऐसी की ऐसी सेवा करता है तो वो आदर से, भय से, ऐश्वर्य भावना से करते हैं। परंतु वृंदावन में जब ऐसी सेवा की जाती है श्री कृष्ण की, तो वो शुद्ध स्नेह से होता है, जैसे एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति होता है। और फिर आगे इन ग्वाल बालों को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पश्येतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वातवर्षात पहीमान सहंतो वारयन्तिनः। वो इन वृक्षों की ओर इशारा करके बोलते हैं, पश्येतान, कि देखो हे मेरे मित्रों, महाभागान, बहुत भाग्यशाली, पर अर्थ एकांत जीवितान, ये वृक्ष हैं केवल जीते हैं पर अर्थ, दूसरों के हित के लिए। पर अर्थ एकांत जीवितान, उनका जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, और वो है कि वो दूसरों के हित के लिए जीते हैं। ये वृक्ष अपने लिए नहीं जीते हैं, स्वयं के लिए नहीं जीते हैं ये वृक्ष, इनकी विशेषता ये है। क्यों ऐसे? वात, वर्ष, ताप, हिमान, सहम तो वारयंती नह। यहां वात मतलब हवा, कभी कभी तेजी, तेज गति से हवा बहती है और हम लोग अंदर आके सब ओढ़ लेते हैं ताकि हमें ठंडी न लगे। कभी वर्षा होती है, वृष्टि के समय भी तकलीफ होती है, हम लोग अंदर आ जाते हैं। ताप मतलब कभी गर्मी बहुत हो जाती है, कई प्रांतों में कभी हिम या बर्फ भी गिरता है। कई महीने पहले वृंदावन में बर्फ के बड़े बड़े गोले पड़े, कई सालों के बाद, वो भी ठंडी के मौसम में नहीं, अचानक। पहले मैंने सोचा कुछ कोई पटाखे फोड़ रहा है कि क्या हो रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। जब एक मिनट लगातार चलता रहा कि इतने लंबे समय तक तो कोई पटाखे फोड़ता नहीं, ये क्या आवाज है, बाहर जाके देखे तो इतने बड़े बड़े गोले बर्फ के गिर रहे हैं, सब जगह बर्फ 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 बर्फ, और सब जगह के गाड़ियों के जो सामने जो शीशा होता है, कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और कई लोग अस्पताल में गए, इतने उनको सर में लग गया बर्फ के टुकड़े, तेज गति से आ रहे थे। हम लोग तो अंदर भाग सकते हैं, लेकिन वृक्ष क्या कर सकते हैं? सहन तो वो केवल सहन करते हैं और खड़े रहते हैं। वारयंती नह, और बल्कि हमें इन चीजों से बचाते हैं। कई बार हम देखते हैं रास्ते में लोग स्कूटर वगैरह पे जा रहे होते हैं, अचानक बारिश होती है, कहां जाते हैं? सीधे पेड़ के नीचे चले जाते हैं। पेड़ सहन करते हैं वृक्ष को, वर्षा को, गर्मी को, ठंडी को, लेकिन हमें इन चीजों से बचाते हैं। इसलिए वृक्ष को बहुत सहनशील माना जाता है। अगर हमें सहनशील होना है तो वृक्ष की तरह होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, तरोर अपि सहिष्णुना, कौन सा श्लोक है ये, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तयन हरि। तो हमें अगर बार बार कीर्तन करना है, 24 घंटे अगर हमें कीर्तन करना है, भगवान का नाम का जप करना है, तो हमें ये चार गुणों की आवश्यकता है कि हम हमेशा घास के तिनके के समान नम्र रहें, हम वृक्ष के समान सहनशील रहें, दूसरों को सदा सम्मान दें और अपने लिए सम्मान की अपेक्षा न करें। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण इन वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में ये वृक्ष भी उन मनुष्यों से श्रेष्ठ है जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। अभी वो धीरे से टीका करने वाले उन ब्राह्मणों का, अब आगे चल के हम सुनने वाले हैं कि कैसे ये ब्राह्मण जो हैं उन्होंने शुरुआत में श्री कृष्ण और बलराम की परवाह नहीं की, बल्कि उनके पत्नी जो है वो महान भक्त थी। तो ब्राह्मण होने के नाते इनको चाहिए था, उचित था कि वो श्री कृष्ण का आदर करें, उनकी सेवा करें, लेकिन ऐसे उन्होंने नहीं किया। तो श्री कृष्ण के ऐसे वृक्षों का की प्रशंसा करने का तात्पर्य ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वो वृक्ष हैं जो सदैव दूसरों की जीवन जीविका का देखभाल करते हैं, दूसरों के लिए वो सदा जीते हैं, ऐसे वृक्ष श्रेष्ठ हैं। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं अपने मित्रों से, अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणुपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अहो एषां, अहो जरा देखो तो सही, एषां इनको, इन वृक्षों को, वरम जन्म इनका जन्म वरम है मतलब श्रेष्ठ है। अभी ऐसे साधारण तो हम नहीं कहते, अरे देखो ये वृक्ष है, निकृष्ट जन्म है इसका, लेकिन श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, निकृष्ट जन्म नहीं, वरम जन्म, श्रेष्ठ जन्म। अपने मित्रों से वृक्षों की ओर इशारा करके कहते हैं कि अरे देखो इनका जन्म कितना श्रेष्ठ है, वरम जन्म। और क्यों श्रेष्ठ है, सर्व प्राणी उपजीवनम, क्योंकि सारे प्राणियों को वो जीविका प्रदान करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनका जीवन श्रेष्ठ है, उनका जन्म श्रेष्ठ है। तो केवल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से हमारा जन्म श्रेष्ठ नहीं कहलाता, भागवत के दृष्टिकोण से केवल एक राजा या कोई ऊंचे अमीर परिवार में जन्म लेने से अपना जन्म सार्थक नहीं होता या उसे श्रेष्ठ जन्म नहीं कहलाता। चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, जो भी कोई हो, अगर हम अन्यों के लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन से अन्यों को लाभ हो रहा हो, तब हमारा जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए भागवत कितना विशेष शास्त्र है, ऐसी सब बातें हमें कहां सुनने को मिलती हैं, कौन ऐसे बताता है, ऐसे कौन से अखबार में, पुस्तक में, उपन्यास में ऐसी चीजें सुनने में आती हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं ये वृक्ष बिल्कुल सुजनस्य, ऐसे सुजनों की तरह हैं। सुजन मतलब अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, दानी लोग, उदार हृदय के लोग। इसके विपरीत है दुर्जन, जिनका मन बहुत छोटा है, छोटे हृदय के लोग होते हैं, कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने लिए रह जीना चाहते हैं। तो यहां कृष्ण कहते हैं सुजनस्येव येषां वै, ये वृक्ष ऐसे सुजनों के समान हैं, जो बहुत दानी हैं, जो बहुत उदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं। और ऐसे दानी लोग क्या करते हैं, विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अर्थिनः मतलब कोई अर्थ के लिए, कोई किसी एक भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति के पास आता है, वह कभी निराश होकर नहीं जाता, तो ऐसे लोगों के समान ये वृक्ष हैं। क्योंकि कोई भी इच्छा लेके वृक्ष के पास जाता है तो निराश नहीं होता, वृक्ष अपना सब कुछ उसके लिए दे देता है। तो देखो इनका जन्म कितना सफल है, इनका जीवन जो है वृक्ष के रूप में होने के बावजूद धन्य है। तो ऐसा जीवन श्रेष्ठ है। जब हम कहते हैं कि हम दूसरों के लिए जीना चाहिए, तो दूसरों के लिए क्या लाभ देना चाहिए, क्या भला करना चाहिए हमें, तो श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है स्पष्ट रूप से, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम, कि लोगों को अपना हित बतलाना और हित की ओर ले जाना और हित में स्थित करना, कृष्ण भक्ति के पथ में सबको ले जाना और आगे बढ़ाना, ये सबसे ऊंचा परम कल्याणकारी कार्य है। इसलिए हम जब कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, इसका मतलब है कि हम दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए हमें जीना चाहिए, अर्थात प्रचार के लिए। तो प्रचार की शुरुआत कहां से होती है? आचरण से होती है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भक्ति कहने के लिए कैसे कह पाएंगे? हमारे वाणी में कोई शक्ति नहीं होगी। अगर हम अच्छी तरह से जप करते हैं, हम दर्शन करने आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कथा में शामिल होते हैं, कीर्तन करते हैं, तो फिर वो शक्ति हमें मिलेगी कि हम जाके सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। तो हमारा जीवन इसके लिए होना चाहिए, सबसे ऊंचा उद्देश्य है ये जीने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त के बारे में कहेंगे वरम जन्म, इनका जन्म श्रेष्ठ है, भले कोई बेलगाम में जन्म लिया हुआ हो या कहीं और भी। ऐसे कई उदाहरण हैं भागवत में भी, कई राजाओं के जिन्होंने अपना शरीर भी अन्यों की सेवा के लिए दे दिया। कोई उदाहरण आपको याद आते हैं? दधीची ऋषि, उन्होंने क्या किया? अपने हड्डी दे दे शरीर के, दे दिए। किनको दे दिए? देवताओं को। क्यों? हड्डी क्यों चाहते थे देवतागण? वज्र बनाने के लिए, अस्त्र बनाने के लिए। तो दधीची ने सोचा, अगर मेरे जीवन से, मेरे शरीर से आपको कुछ लाभ हो रहा है और आप भगवान के भक्त हैं, ठीक है, ले लीजिए मेरा शरीर। दधीची ने ये नहीं सोचा कि अरे फिर मैं, मेरा क्या होगा, ऐसे नहीं सोचा। और कौन से उदाहरण है? महाराज शिबी, शिबी महाराज ने भी केवल पक्षियों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस जो है वो काट के वो देना चाह रहे थे, अपने सारे शरीर को भी वो समर्पित करना चाह रहे थे। तब इन पक्षियों ने अपना रूप बदल लिया और वो वास्तव में देवता गण थे, महाराज शिबी की परीक्षा करने आए थे। तो इस प्रकार से कई उदाहरण देखे जाते हैं। और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से अपने वृद्धावस्था में, अपने बीमारी की अवस्था में इतने कठिनाइयों को सहन करके सारे दुनिया को कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो हम कह सकते हैं कि उनका जन्म परम जन्म, वरम जन्म, सबसे श्रेष्ठ जन्म उनका है, सबसे श्रेष्ठ जीवन उनका है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए दे दिया। तो आगे कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं कि वो यूं ही वृक्षों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसके लिए कारण है। किस प्रकार से वृक्ष अन्यों की सेवा करते हैं, इसके बारे में कृष्ण कहने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि जो वृक्ष होते हैं वो कितने तरीकों से अन्यों की सेवा करते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। कृष्ण ने 12 कारण दिए हैं, बताइए एक एक करके कैसे सेवा करते हैं। एक कारण उनके फल देते हैं, सबको आहार हो जाता है फल, एक कारण। अच्छा, कोई गिनते जाइएगा, ठीक है। दूसरा, छाया देते हैं फल, फल नहीं वृक्ष, सबको। लकड़ी देते हैं, लकड़ी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम जला के उष्णता पैदा कर सकते हैं वगैरह। चौथा, फूल देते हैं, फूल से बहुत सुगंधित हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, इसे अपने आप को भी सुशोभित कर सकते हैं, इसे सुगंध आता है, घर में भी हम रखते हैं ताकि घर में सुगंध हो जाए, सौंदर्य हो जाए। चार, और रस बहुत महत्वपूर्ण, वृक्ष का रस क्या होता, कैसे आता है रस, कोई उदाहरण देंगे कौन से वृक्ष का रस बहुत महत्वपूर्ण होता है? रबर, रबर आपने सुना है, रबर, हम रबर के चप्पल वगैरह पहनते हैं ना, ये रबर के पेड़ में से आता है, ये रबर क्या चीज है? उस रबर के वृक्ष का रस है ये, उसे ठोकर मार के उसको वो रस निकालते हैं, फिर उस रस को निकाल के फिर वो फैक्ट्री में जो भी कुछ करते हैं आगे चल के फिर वो रबर बन जाता है। कभी कभी ये रस मीठा भी होता है पीने, वो उसको हम उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो और क्या बताइए, छाल बहुत जरूरी। आजकल तो इसका ज्यादा महत्व नहीं है, फिर भी है। पुराने जमाने में ऋषिगण जो है वो वृक्ष के छाल का इस्तेमाल करते थे, इसको वल्कल कहते हैं, और अपने शरीर में पहन लेते थे। तो उस समय तो कपड़ों की फैक्ट्रियां कारखाने तो नहीं थे, और ये लोग कहां से पहनते वृक्ष? जब ऋषि मुनिगण जंगल में रहते थे तो वहां कोई बुनाई के लिए ये कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी गोकुल धाम में कल उद्घाटन हुआ, कृष्ण बलराम हैंडलूम कल उद्घाटन हो गया। अभी वहां चरखे भी आ गए हैं, और थोड़े कपास लेकर अभी भक्त लोग चरखे पे सूत बना रहे हैं, और उसको सूत को फिर उसकी बुनाई हो रही है। हथकरघ हैंडलूम भी आ गया है, एक तो आ गया और कल शुरुआत हो गई, खट 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 करके हाथ से। अभी पहले धोती हो रही है अभी। तो इस प्रकार से ये हाथ से सब बनाया जाता है। प्रभुपाद की इच्छा थी कि भक्त जो है इस प्रकार से जिए, अगर हो सके तो। रोटी कपड़ा मकान, ये तीन समस्याएं है ना सब जगह। तो प्रभुपाद जी चाहते थे हम ये तीनों चीजें अपने आप के लिए करें। मकान आपने देखा था गोकुल धाम में, कैसे भक्तों ने इतना परिश्रम करके सुंदर मकान बनाए, अपने लिए भी बनाया, भगवान के लिए भी बनाया, गायों के लिए भी बनाया। तो मकान हो गया, वहां से ईंटें बनाई, सब मिट्टी की ईंटें या फिर पत्थर से। चूना भी खुद बनाया, बैलों को लेके घानी में उसका चूना करके, उसको चूर करके फिर उसका चूने का इस्तेमाल किया, मकान बन गए। अब रोटी की बात है, वहां वो कोशिश कर रहे हैं बहुत कृषि करने के लिए, सब्जी आदि का उत्पादन करने के लिए। और कपड़ा रह गया, कपड़ा तभी उसकी भी शुरुआत हो गई है अभी धीरे धीरे से, अब सब लोग सीख रहे हैं। जब हम ये हथकरघ को देखते हैं, हैंडलूम को देखते, कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है, खड़ 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 इधर से उधर, इधर से तो कुछ जा रहा है, लेकिन जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। कितना अच्छा जीवन है, अपने इधर उधर समय बर्बाद करने में या तो जप करो, और कुछ चल रहा है थोड़ा समय बचा है। गोकुलधाम के जीवन में ऐसे होगा, सब लोग अपना धागा बनाएंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, फिर बुनाई भी हो सकती है। कितना अच्छा जीवन, कोई दूसरों का कर्म लेना कुछ नहीं, बड़ा आनंद का जीवन है। और ऐसे कपड़े हम पहनेंगे अपने बनाए हुए, और कपास भी अपने यहाँ जो खेती करके जो पाया जाता है, तो कितना अच्छा जीवन है। तो ये हमारे अभी हैंडलूम के कपड़े भी हमारे भक्त धीरे धीरे से पहनेंगे जब तैयार हो जाएंगे। तो वल्कल, पहले साधु मुनि जो है ऋषि, वो वल्कल पहनते थे, छाल, वृक्ष के छाल को पहनते थे। और कभी कभी आयुर्वेद में भी कई ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं जो वृक्ष के छाल से भी पाई जाती हैं। आप अगर इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक जड़ी बूटी के लिए, हर एक वनस्पति के लिए वो बताते, औषध के लिए बताते हैं कि वृक्ष के कौन से भाग से पाया जाता है। कई औषधियां होती हैं जो वृक्ष के पत्ते से पाई जाती हैं, कई उनके फल से, कई उनके बीज से, कई उनके फलों से, कई उनके छाल से, कई उनके जड़ से। वृक्ष का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो व्यर्थ है। एक बार हम एक गांव में गए थे महाराष्ट्र में, और वहां हम बतला रहे थे ऐसे कैसे हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए, और ये सब तंबाकू आदि सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो बता रहे थे तंबाकू ये तो खेती से उत्पन्न होता है, तो इसको लेने में क्या है, तो भगवान ने दिया है। तो हमने कहा हाँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भगवान ने हशीश गांजा के पेड़ भी दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो सब लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे भी कई वृक्ष हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। हम बोला एक भी वृक्ष का नाम लो जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक वृक्ष आप देखिए, कुछ ना कुछ उसका उपयोग है, भले हम नहीं जाने उसके बारे में, परंतु हर एक चीज का जो भी भगवान ने सृष्टि में बनाया है उसका कोई ना कोई उपयोग है। लेकिन हम सही ढंग से नहीं करते वो अलग बात है। तो वृक्ष के हर एक भाग का मूल्य है, महत्व होता है। तो छाल वलकल ये भी महत्व है, और क्या महत्वपूर्ण है? औषधि तो ये अलग अलग भाग से आते हैं, जैसे मूल से आदि, मूल भी महत्वपूर्ण है। पत्ता, पत्ता भी है ना, आजकल तो लोग बहुत खाते हैं पत्ता, उसको पान कहते हैं, तांबूल हम लोग नहीं लेते, वैष्णव लोग पान नहीं खाते। हालांकि भगवान को तांबूल भोग के रूप में चढ़ता है, परंतु वैष्णवगण तांबूल या पान ग्रहण नहीं करते हैं। और आगे ये भी कहते हैं श्री कृष्ण, गंध, वृक्षों का गंध जब आता है, कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो दूर से पहचान सकते हैं कि हाँ ये वृक्ष, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ होने चाहिए। साथ साथ वो कहते हैं भस्म अस्थि, भस्म, जब वृक्ष को भस्म किया जाता है उसका भी फायदा होता है, कभी जड़ी बूटी में, कभी औषधि में, और कई भी लाभ होते हैं। साथ साथ में उनके अस्थि, अस्थि मतलब उसको पानी में मिलाकर उसका क्या कहते हैं, पल्प किया जाता है, जैसे कागज का निर्माण करते हैं। कागज को कैसे बनाते हैं? वृक्ष से बनाते हैं ना, वृक्ष के लकड़ी से उसको मिलाकर, फिर उसको बहुत ही कोमल कोमल बना के फिर उससे कागज बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभि गंध निर्यास भस्मास्थि तोपमय कामान वितन्वते। इन 12 चीजों का वर्णन वो करते हैं कि देखो समस्त प्राणियों की समस्त इच्छाएं ये वृक्ष पूर्ण करते हैं 12 तरीकों से। अपना सब कुछ, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है वृक्ष का जो दूसरों के लाभ नहीं आता है। और फिर वृक्षों की प्रेरणा से कैसे हमें जीना चाहिए, किस भाव से, वो श्री कृष्ण बताते हैं। तो आइए अब हम ये श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, विशेष करके 3 लाइन, प्राणे अर्थे धिया वाचा, चैतन्य महाप्रभु भी ये कहा करते थे इस श्लोक को। तो आइए इसको हम अभी दोहराएंगे। एतावत् जन्म साफल्यम् देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम् देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। बोलिएगा। जन्म साफल्यम् देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। एतावज्जन्म साफल्यम्
ईशु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेया आचरणं सदा।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। दोहराइएगा, हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। प्राण ही मतलब प्राण, अर्थ ही मतलब धन, धन से धिया मतलब बुद्धि से, और वाचा मतलब वाणी से। तो इन चार तरीकों से हमें सबकी सेवा करनी चाहिए और भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे अपना प्राण भगवान के लिए त्यागना चाहिए, अगर वो नहीं कर सकते प्राण है तो कम से कम थोड़ा अर्थ दे सकते हैं। अर्थ मतलब हमारा धन, जो भी हमारे धन है थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं जितना हो सके। धिया अपनी बुद्धि हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। बुद्धि भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए। बुद्धि का इस्तेमाल, हाँ, भगवान का कीर्तन का महत्व समझ के, जैसे अभी आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोई कृष्ण के बारे में कुछ बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं समझने के लिए और उसको याद रखने के लिए। जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये भी बुद्धि का प्रयोग है, ये भी भगवान की उपासना है। जैसे हम अगरबत्ती से, हम दीप से भगवान की अर्चना कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम बुद्धि से कैसे भगवान की अर्चना कर सकते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ के, अध्ययन करके, उनके वाणी को श्रवण करके, तो ये बुद्धि से कृष्ण की सेवा हो जाती है। तो बुद्धि से, बुद्धि का इस्तेमाल हम कृष्ण की सेवा के लिए भी करते हैं कि प्रचार को कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ कहाँ प्रचार किया जाए, कैसे किया जाए, या मंदिर के व्यवस्थापन में भी बहुत कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये समस्या आई तो उसको कैसे सुलझाना चाहिए, तो हर चीज में बुद्धि का उपयोग हमें कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। और फिर प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, वाचा मतलब वाणी से, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होई तार ऐ देश। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमें हर एक व्यक्ति को श्री कृष्ण की वाणी को बतलाना चाहिए, जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं उनको दोहराना चाहिए जो हमने सीखा है प्रभुपाद जी के ग्रंथों से। इस प्रकार से प्राण अर्थ धिया वाचा, इन चारों से हमें अन्यों के लिए कल्याणकारी कर्म करने चाहिए, इससे हमारा जीवन सफल होगा। ये सिद्धांत दुनिया के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि साधारणतः दुनिया का सिद्धांत पहले अपने लिए करो और कुछ बचा तो फिर ठीक है, फिर दूसरों की बात सोचेंगे तो सोचेंगे आगे की बात, ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं है, और जो सोचते भी है पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। लेकिन यहां बताया गया है, ये भाव जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि कैसे हमें अन्यों के लिए जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव जी को कई अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। उनमें से एक उपदेश के दौरान वो बतलाते हैं कि एक अवधूत ब्राह्मण जो थे, उन्होंने महाराज यदु को कोई उपदेश दिए थे। महाराज यदु ने जब प्रश्न किए उनको कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा मेरे 24 गुरु हैं, और जो सब वो देखते थे, आसमान है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये पहाड़ है, पृथ्वी माता है इत्यादि, ये सब मेरे गुरुजन हैं। इनसे मैं अलग अलग चीजें सीखा हूं। तो पहाड़ से उन्होंने सीखा कि कैसे दूसरों के लिए हमें जीना चाहिए, उसी प्रकार से वृक्ष से भी उन्होंने यही सीखा, पर आत्मताम, कि कैसे अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देना चाहिए, पर आत्मताम, दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देना, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना। बल्कि वैदिक सभ्यता यही है कि वही व्यक्ति मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है वो केवल नाम के लिए मनुष्य कहलाता है, वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। हाँ, हो सकता है हम महाराज शिबी की तरह या दधीचि ऋषि की तरह हम त्याग नहीं कर पाए, नहीं इस काल में इस चीज को किए जा सकते हैं, परंतु कम से कम इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में हम सहयोग दे सकते हैं, हम जितना हो सके हम सेवा कर सकते हैं। प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, जैसे यथाशक्ति जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये परम कल्याणकारी कार्य है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण और भी कहते हैं, कृष्ण का इन वृक्षों का गुणगान करते हुए उनके बीच से निकलने लगते हैं, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे वृक्ष जो हैं वो झुके हुए थे, प्राय ऐसे मानो कि वो दंडवत करना, प्रणाम करना चाहते हैं श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण यहां से जा रहे हैं, वृक्ष तो बोल नहीं सकते तो प्रणाम कैसे करेंगे, उनके हाथ भी नहीं, हाथ क्या है, उनकी शाखाएं हैं, तो फिर भी वो प्रणाम करने जा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण जा रहे हैं, गुजर रहे हैं उनके वृक्षों के बीच में से, यमुना की ओर जा रहे थे, साथ साथ में छाया भी दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में लीला करते थे, भक्ति की लीला उन्होंने शुरू नहीं की थी, ये उस समय की बात है जब एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था केशव कश्मीरी, वो नवद्वीप में आए थे इस उद्देश्य से कि मैं यहाँ के सारे ब्राह्मणों को परास्त कर दूं, हरा दूं वाद में, ताकि मेरा नाम हो जाए कि मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं। और उन्होंने सुना था कि निमाय पंडित ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बाकी जितने भी ब्राह्मण थे, पंडित थे नवद्वीप में, वो बहाना बनाकर नवद्वीप के बाहर चले गए थे, अरे मेरे भांजे की शादी है, या किसी मेरे कोई रिश्तेदार बीमार है, कोई ये बहाना वो बहाना बनाकर सब चले गए, क्योंकि वो केशव कश्मीरी का सामना नहीं करना चाहते थे, वो डरते थे, जानते थे कि हम तो निश्चित ही हार जाएंगे, हमारा अपमान हो जाएगा, इसलिए डर के मारे वो सब भाग गए। तो फिर केशव कश्मीरी ने सोचा, चलो ये ब्राह्मण तो रह गए, लेकिन हमने इस निमाय पंडित के बारे में बहुत सुना है। तो उन्होंने आकर निमाय पंडित के सामने कहा कि हमने सुना तुम बहुत बड़े पंडित हो। तो निमाय पंडित ने कहा, नहीं, मैं कहा पंडित हूं, मैं आपके सामने एक बच्चा हूं, मैं तो केवल 16 साल का हूं, मुझे क्या पता है, मैं तो एक केवल व्याकरण का शिष्य हूं, एक विद्यार्थी हूं, मुझे क्या पता ये सब, लेकिन फिर भी आप बड़े विद्वान हैं, हम यहाँ गंगा जी के तट पे बैठे हैं, गंगा जी बह रही हैं, तो क्यों ना आप गंगा जी की प्रशंसा में कोई आप कविता लिखें या कविता का निर्माण करें। तो तुरंत बिना रोके हुए, बिना सोचे हुए भी केशव कश्मीरी ने बहते हुए पवन की तरह एक के बाद एक 100 श्लोक मुख से निकाले गंगा जी की प्रशंसा में। सभी लोग केवल देखते रह गए, कुछ निर्वचन हो गए सभी लोग। ऐसी विद्वत्ता, ऐसी बुद्धि आज तक किसी ने कहीं नहीं देखी थी। और ऐसे नहीं कि वो कंठस्थ करके आए थे श्लोक पहले लिख के, नहीं, उसी समय उन्होंने रचना की इन श्लोकों की, 100 श्लोक एक के बाद एक, जैसे अमृत की धारा बह रही थी। और जब होने के बाद केशव कश्मीरी सोच रहे थे कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, देखो कोई सामना कर सकता है मेरा। तो फिर निमाय पंडित ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन आपका एक श्लोक है जिसमें 5 गुण हैं, 5 दोष हैं,
तो पहले तो केशव कश्मीरी को गुस्सा है कि मेरे श्लोक में तो दोष हो ही नहीं सकता, गुण तो बहुत है लेकिन दोष तो हो ही नहीं सकता, फिर भी कौन सा श्लोक, कौन से श्लोक की बात कर रहे हो। फिर निमाय पंडित ने सारा श्लोक कह दिया और उसमें से जो गुण थे अच्छे और जो दोष थे वो पांच पांच बता दिए। केशव कश्मीरी निर्वचन हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, उनकी बुद्धि स्तब्ध हो गई, सोच भी नहीं सके वो। कि पहली बात तो ये है कि इस बच्चे ने याद कैसे किया 100 के 100 श्लोक। मैं तो बहते हुए पवन की तरह बोले जा रहा था, इसने याद भी कैसे किया, और याद करने के बाद इसकी इतनी बुद्धि कैसे कि इसने मेरे इस श्लोक में 5 दोष ढूंढ निकाले एक श्लोक में। और मैंने तो कभी ऐसे गलती की नहीं, ऐसे दोष तो मैं भी सोच नहीं सकता था कि ऐसे दोष हो सकता है। और केशव कश्मीर कुछ नहीं बोल पाए। जो निमाय पंडित के दोस्त थे वो सब हंसने लगे, निमाय पंडित उनको चुप किया। एक सज्जन व्यक्ति जो होता है अगर किसी को हराता है तो उसका अपमान आगे नहीं करता, उसका हार ही अपमान है, और उसके घाव में नमक डालता नहीं है। वो उदार हृदय का जो आदमी होता है चले जाता है वहां। जैसे आपने कहानी सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान, है ना, वो कौन थे आए थे जो आक्रमण करके आए थे ना, कोई घोरी या कोई मोहम्मद घोरी, जब उनको हरा दिया तो शरण में आ गए, चलो ठीक है अभी और तुम्हें नहीं मारूंगा मैं, तुम हार गए मेरे सामने चले जाओ, तो छोड़ दिया चले गए। लेकिन वही व्यक्ति बाद में आए और जब पृथ्वीराज चौहान को इसको हरा दिया एक बार तो पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो वो भावना जो है प्रामाणिक क्षत्रिय में जो होती पृथ्वीराज चौहान में थी, लेकिन उसमें नहीं थी दूसरे में। तो जो सभ्य व्यक्ति होते, उदार व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने चैतन्य निमाय पंडित ने कहा नहीं नहीं, और कहा कि आप अभी चले जाइएगा, आप आराम विश्राम कीजिए, हम कल और चर्चा करेंगे। बड़े मीठे शब्दों में उनको वापस भेज दिया। और उस दिन केशव कश्मीरी को नींद नहीं आई, अपने सरस्वती देवी से प्रार्थना करने लगी कि हे सरस्वती देवी, मेरा अपमान आपने एक बच्चे के माध्यम से द्वारा क्यों कराया, ऐसे क्या मैंने आपको नाराज किया है, आपको कोई कष्ट दिया है, कोई अपमान किया है आपके चरणों में, ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ा, ये तो मृत्यु से भी भयंकर है मेरे लिए। तब सरस्वती देवी आई निमाय पंडित के सामने और कहा कि इसमें कोई दुखी होने का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए, ये मेरे भी आराध्य देव हैं, ये वही श्री कृष्ण हैं, इसलिए चिंता नहीं करो, कल जाके उनके शरण में जाओ और उसे कृपा याचना करना, क्षमा याचना करना। तो आगे चल के केशव कश्मीरी गए अगले दिन, एकांत स्थान में निमाय पंडित का आश्रय लिया और निमाय ने कहा अब किसी को बताना नहीं, अब जाओ। उन्होंने कृपा की। तो जब हरा दिया था केशव कश्मीरी को निमाय पंडित ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कहा था जिसमें वो बताना चाहते थे कि दो प्रकार की चीजें हैं जो झुकते हैं, एक है फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन। जो जिस वृक्ष में बहुत सारे फल होते हैं वो फल के बोझ के द्वारा वो शाखाएं जो है वो झुक जाती हैं, और दूसरे हैं गुणवंत जन, जो चरित्रवान व्यक्ति है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, सच्चे गुण वाला व्यक्ति होता है, वो भी जानता है कब झुकना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि ये झुकना ही हमारे भाग्य में लिखा है तो होगा, ये हमारे हित के लिए है, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं झुकता है। यहां ये जो वृक्ष हैं झुक रहे हैं, न केवल इसलिए कि उनके बहुत सारे फल हैं, साथ साथ में इसलिए भी क्योंकि ये वास्तव में गुणवंत हैं, सारे अच्छे गुण इनके अंदर हैं, क्योंकि ये भक्त हैं ये वृक्ष, इसलिए श्री कृष्ण के सामने इस प्रकार से वो झुक रहे हैं। और आगे जैसे कृष्ण भगवान चलते गए इन वृक्षों के बीच में से, फिर वो पहुंचे यमुना के तट पर। यमुना देखा तो यमुना में क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, तत्र गाह पायया वेत्पा सुमृष्टा शीतल शिवा ततो नृपो स्वयं गोपा कामं स्वादुपपुर्जलम्। तत्र गाह, तत्र मतलब उस स्थान में, गाह मतलब गायों को, पाययित्वा उनको पिलवाया, गौओं को क्या पिलवाया, आपह पानी, जमुना जी का जल। तो आजकल हम जमुना जी के पास में जाते हैं तो जमुना जी के अंदर बहुत सारी गंदगी लोग डालते हैं, दिल्ली से या हरियाणा से लेकर जितने भी जगह हैं जमुना जी के तट में, सब तरह तरह की गंदगी डालते हैं जमुना जी में। अब जमुना जी दिखने में वो नहीं रही, हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से तो जमुना जी हमेशा शुद्ध और पवित्र ही रहेंगी। चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चिदानंद भानो, ये चिन्मय है ये जल हमेशा, क्योंकि पर प्रेम पात्री नंद सुन, नंद सुन श्री कृष्ण को परम प्रेम प्रदान करने वाला ये जल है। द्रव ब्रह्म गात्री, ये तो साधारण नहीं है, ब्रह्म है, ये चिन्मय है। तो हालांकि भौतिक दृष्टि से कोई गंदगी होगी, फिर भी आध्यात्मिक रूप से तो ये बहुत बलवान है, हमें स्नान करना चाहिए जमुना जी में। लेकिन अगर किसी चीज को हम पवित्र मानते हैं तो क्या हम उसको स्वच्छ बाहरी दृष्टि से भी नहीं रखेंगे? जैसे मंदिर है, ये पवित्र स्थान है, तो मंदिर को, मंदिर के परिसर को हमें बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। साथ साथ हमारा घर भी मंदिर है, क्योंकि हम घर में भी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो घर भी बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। हमारा शरीर भी मंदिर है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है हमारे हृदय में, तो हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, हमारे मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो जमुना जी का जल श्री कृष्ण के लीला के समय कैसे था? सुमृष्टा है, मतलब बहुत ही साफ था, स्वच्छ था। शीतला है, बहुत शीतल जल था। शिवा है, बड़ा तृप्त करने वाला, पौष्टिक था। ततो नृप स्वयं गोपा है, फिर गौओं को पिलाकर फिर भगवान श्री कृष्ण ने पर गोपालों को के साथ पपुह जलम स्वादु, इस स्वादिष्ट जल का पान किया, जमुना जी का जल। और आगे चलते हुए और आगे चले गए भगवान श्री कृष्ण। अब जब सभी संतुष्ट हुए थे, ग्वाल बाल भी और गायें भी, फिर कृष्ण आगे चलते गए। तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशुं नृप कृष्ण रामा उपागम्य क्षुद आर्ता इदम अब्रुवन। तस्या मतलब यमुना के तट पर, उपवने वो एक उपवन में पहुंचे, वन भी होते हैं उपवन भी होते हैं, उपवन मतलब बगीचा जैसा, और वहां पे चले गए। कामम चारयन्तः पशून, जो पशु चर रहे थे इधर उधर इधर उधर, जहां उनकी इच्छा हुई वहां चरते हैं पशु। गोकुल धाम में भी हम देखते हैं हर दिन सुबह गाय निकलते हैं गोष्ट से, अपने गौशाला से, और सब फिर आगे चलते हैं, फिर वन में चले जाते हैं जंगल में, और वहां जाके जहां उनकी इच्छा होती वहां इधर उधर चरने लगते हैं। कोई घास खाते हैं, कोई पानी पीते हैं, कोई थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कोई एक दूसरे को चाटते हैं, ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार वो घूमते फिरते हैं। थोड़ी कसरत भी हो जाती है, ताजी अच्छी हवा भी मिल जाती है, ताजा घास मिल जाता है, हरियाली में घूमते फिरते उनको बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। तो गाय ऐसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो गाय जब चरने जाते हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं और हृष्ट पुष्ट भी रहते हैं, क्योंकि सब जगह घास जड़ी बूटी वगैरह खा खा कर उनके शरीर में जो भी रोग हैं वो भी कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके गायों को प्रसन्न करते हैं। तो जो भक्त वहां रहते हैं और जो नहीं रहते हुए भी जहां उन गोकुल धाम के लिए सेवा कर रहे हैं, वो भी इन गायों की सेवा करते करते अवश्य भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। तो गाय ऐसे चरते फिरते इधर घूम रहे थे, उधर ग्वाल बाल क्षुध आर्ता, क्षुध मतलब भूख, आर्त मतलब पीड़ित, ग्वाल बाल भूखी भूखे हो गए और भूख के मारे कृष्ण के पास आए। कृष्ण रामाव उपागम्य, कि कृष्ण और बलराम के पास आए और इदम अब्रुवन और उनसे कुछ कहने लगे भूख मिटाने के बारे में, क्योंकि कृष्ण ही है सब कुछ प्रदान करते हैं, तो बीच जंगल में अब क्या मिलेगा, थोड़े बहुत फल तो मिलते हैं लेकिन उनको अन्न भी खाना था। जब हमारे भक्त लोग गाय लेके जाते हैं गोकुल धाम में गावों के साथ में, तो हमारे भक्त कोई जाते हैं फिर दोपहर में उनका प्रसाद लेकर उनको देते हैं, फिर बड़े आनंद से वो जंगल में गावों के साथ में बैठ के प्रसाद लेते हैं, फिर वो एक भक्त चले जाते हैं, दूसरे भक्त गावों को शाम को लेकर चले जाते हैं। अच्छा जीवन, कोई तनाव नहीं। आजकल के जीवन में इतना टेंशन है ना, सब जगह तनाव तनाव तनाव। कितना अच्छा जीवन, आनंद से जियो, गावों को खुश करो, वो घास खाएंगे हम प्रसाद खाएंगे, और उनको ले आओ, फिर बाद में आके दोहन करो, क्या चाहिए और जीवन में। तो वहां ऐसे कोई हमारे भक्त नहीं थे जो उनको लाके उनका टिफिन दे दे। इस बार वो खा भी गए थे, अभी और भी भूखे थे क्योंकि इतनी क्रीड़ा कर रहे थे तो भूख भी बहुत थी। जब कोई तकलीफ होती है तो ब्रजवासी कहाँ जाते हैं, कृष्ण बलराम के पास। इस बार भी वो कृष्ण बलराम के पास आए। और इस श्लोक के साथ अभी 22वां अध्याय खत्म होता है, जिस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने वस्त्र हरण लीला का वर्णन किया है। और आगे जो 23वां अध्याय है वो है यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृष्ण की कृपा, और ये एक बैकग्राउंड है। आगे चल के सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने इन यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? शायद आज शाम को आगे इस बात को बढ़ाएंगे, 23वें अध्याय को। ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं, समय मिले तो आप जप कीजिए, आप मंदिर में आके सेवा कीजिए, और अपना दिन आज का बहुत कृष्ण भावना भावित बनाइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।